SBS हिंदी हमारी कहानियां फेसबुक पर।
अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत में चिंता व्याप्त है। वहां से भारतीय दूतावास के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। अब सरकार का फोकस वहां फंसे अन्य भारतीयों को वापस लाने पर है। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन मंगलवार को स्वदेश लौट आए। अपनी सुरक्षित वापसी के बाद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
We will going forward try and continue our interaction with them. Of course, I cannot say in exactly what form and manner because the situation there is changing so much. We are also continually monitoring the situation there because there are still some Indian citizens who are there.
अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार करने के लिए मंगलवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में भारतीयों की सुरक्षित वापसी के साथ ही अफगानी हिंदू और सिखों को मदद देने पर चर्चा भी हुई। अफगानिस्तान के हालात के बाद बात कोरोना की स्थिति पर। देश में कोरोना के नए मामले आने बंद नहीं हुए हैं। मंगलवार को लगभग 35,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए। इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है, जहां बीते 24 घंटे में 21,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केरल सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल सरकार के कोरोना प्रबंधन मॉडल पर तंज कसते हुए कहा,
आई डोंट वॉन्ट टू प्ले पॉलिटिक्स एज फार एज कोविड इज कंसर्न। आई डोंट वॉन्ट टू से बिकॉज The burden of Kerala is the burden of the country. The burden of COVID mismanagement is the burden of the country. We all have to face it. And we are all there to support it. But I would like to make remember my media friends. I would like to make remember the communist friends who were once talking about the Kerala model of COVID management. Where has that COVID management gone? What has gone wrong? It's not good to say, but it is a fact that 20,000 cases on an average is there in Kerala. At this point of time, 1,08,000 cases are there in Kerala, contributing approximately 50% of the total burden of COVID. This is not management. This is mismanagement. This is not Kerala model. It is a model of mismanagement which we have to understand.
वैसे एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केरल का दौरा किया था। उन्होंने कोरोना प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की सराहना की थी। मनसुख मंडाविया मंगलवार को असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में केंद्र राज्यों की हर संभव मदद करेगा।
अगले दिनों में कोविड मैनेजमेंट के लिए और भविष्य में कोविड का सामना करने के लिए 1,300 करोड़ से अधिक कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को सहायता दी जाएगी। ये सहायता का उपयोग करके लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिसिन का प्रोक्योरमेंट हो, बफर स्टॉक हो, ऑक्सीजन का स्टॉक हो, बेड की सुविधा बढ़े, आईसीयू बेड की सुविधा बढ़े, बच्चों के लिए बेड की सुविधा बढ़े, ये सारी व्यवस्था उसमें से की जाएगी।
पूर्वोत्तर राज्यों में टीकाकरण अभियान को तेज करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। मनसुख मंडाविया इस बारे में बताते हैं,
नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वैक्सीनेशन स्पीड से हो, इसके लिए भी विस्तार से चर्चा की गई है। सभी स्टेट को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और सभी स्टेट भी बहुत एग्रेसिवली वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सभी स्टेट अपनी ओर से कोविड मैनेजमेंट के लिए जो प्लान बनाया है, ये प्लान का अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है और भारत सरकार उसमें सहयोग कर रही है।
कोरोना के बाद चर्चा भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप की। भाजपा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बदसलूकी होने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है।
हमारे जो नव नियुक्त मंत्रीगण हैं, उनके लिए जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुआ है और पूरे देश में हमारे मंत्रीगण जनता का आशीर्वाद लेने आज जनता के मध्य में है। बंगाल में भी हमारे मंत्री हैं, मगर अभी अभी जिस प्रकार की खबर बंगाल से आ रही है वो चौंकाने वाली है और वो दुखद है। 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को बंगाल में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भाग ले रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोई कारण नहीं दिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा को जगह जगह रोकी जा रही है और सबसे दुखद है, मतुआ समाज के पुरोधा, मतुआ समाज के बेटे शांतनु ठाकुर जी, जिनको मंत्री बनाया गया था, नवनियुक्त मंत्री थे, सांसद है बंगाल से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही दुखद है ममता जी, एक मतुआ समाज के बेटे के मंत्री बनने पर क्या इस प्रकार का व्यवहार जायज है? क्या ये मतुआ समाज को आहत नहीं करता है?
ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए संबित पात्रा कहते हैं,
ठीक उसी प्रकार जॉन बराला और सुभाष सरकार, जो हमारे अन्यतम मंत्री हैं बंगाल से, उनके भी रैलियों को बाधित किया जा रहा है, उन्हें भी रोका जा रहा है। मुझे लगता है इस पूरे विषय का संज्ञान पूरा देश ले रही है। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार का डेमोक्रेसी को बचाने का स्वांग तो करती है, लोकतंत्र को बचाने का स्वांग तो करती है, किंतु गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसद और मंत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बंगाल में किया जा रहा है, ममता जी को इस पर जवाब देना चाहिए।
वहीं तृणमूल कांग्रेस भाजपा पर राज्य में अशांति फैलाने का आरोप लगा रही है। भाजपा के विरुद्ध अपनी लड़ाई को देशव्यापी बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस अपने चुनावी नारे खेला हुबे का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा को चढ़ाने के लिए सोमवार को राज्य में खेला हुबे दिवस मनाया गया। वहीं भाजपा ने राज्य में अपने मारे गए कार्यकर्ताओं के सम्मान में जन आशीर्वाद यात्रा को शहीद सम्मान यात्रा का नाम दिया है। आज भाजपा नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठने वाले हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS हिंदी, हमारी कहानियां फेसबुक पर।